ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सहमति बनी, आज होगी औपचारिक घोषणा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई संसदीय क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त, कुल 110 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। राज्य सरकार ने तंबाकू और तंबाकू से बने पान मसाले और गुटखा पर प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई। और आज गुड फ्राइडे है, गिरजाघरों में हो रहा है विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों को लेकर इंडी गठबंधन के प्रमुख दल राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है। सूत्रों ने बताया कि राजद 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, जबकि भाकपा माले समेत अन्य वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इंडी गठबंधन की ओर से आज दोपहर बाद पटना स्थित राजद कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई संसदीय क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। चारों संसदीय क्षेत्रों में कुल 110 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय जनता दल से उनके प्रतिद्वंदी राज्य के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने गया संसदीय सीट से नामांकन पर्चा भरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर ने नवादा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने जमुई संसदीय सीट से पर्चा दाखिल किया। वहीं लोजपा रामविलास के अरुण भारती जमुई और राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार कुशवाहा तथा अर्चना कुमारी रविदास औरंगाबाद और जमुई लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख प्रत्याशी रहे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
पहले चरण के तहत नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। अभ्यर्थी 2 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 19 अप्रैल को होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार अभियान चला रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के साथ निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चला रहा है।
एग्रेसिवली हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, खासकर शिक्षा विभाग के साथ। जितने हमारे हाई स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हम लोग एक बहुत रेगुलरली जो है वहां पे डीएम्स के, रजिस्ट्रार्स के साथ, वहां के प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग करके, और हर कॉलेज में जो एक हमारा इलेक्टोरल लिटरेसी जो हमारी कमिटी होती है, जो क्लब होता है, उसको एक्टिवेट करना, मतदाताओं के लिए जो एक पाठशाला के रूप में, चुनाव पाठशाला जिसको हम लोग कहते हैं, उसको एक्टिवेट करना, इन सबके माध्यम से जो हमारे युवा हैं रूरल एरिया में, ताकि एक ईवीएम कैसे काम करता है, वीवीपैट कैसे काम करता है, इन सबका जो है लोकल लेवल पे उनके वहां पे जो एक्टिवली उनको दिखाना करना उनको, ताकि मन से कोई भी अगर उनके डाउट हम लोगों को क्लियर करना हमारा उद्देश्य है। हमारा टारगेट रहता है कि हम एक एक वोटर तक पहुंच के, अब स्वीप के एक्टिविटीज के तक पहुंच के उनके मन में अगर कोई भी डाउट है उसको क्लियर करें, ताकि उनका जो सबसे बड़ा एक तरीके से जो ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो ये भी है कि जिस दिन आपका वोटिंग डे है उस दिन वोट डालने वो अवश्य है। तो उन तक जितना ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने का हम लोग कार्य कर सकें, वो हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करके दिन रात उसको पहुंचाने का कार्य कर रही है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नारा है, युवा मतदाता के रूप में आप प्रेरित कर सकते हैं राज्य के लाखों युवाओं को। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने एक व्हाट्सएप नंबर 7004910506 जारी किया है। युवा इस व्हाट्सएप नंबर पर मतदान करने की अपील से संबंधित अपना वीडियो साझा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदान कार्य से जुड़े कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के मानदेय भुगतान से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि 21 श्रेणियों में कर्मियों के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता भुगतान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कर्मियों को अल्पाहार और भोजन के लिए प्रतिदिन 350 रूपये मिलेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग और वित्त विभाग की सहमति से यात्रा और दैनिक भत्ता भुगतान का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में जननायक के पुत्र और राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर यह सम्मान ग्रहण करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में कर्पूरी ठाकुर के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार ने तंबाकू और तंबाकू से बने हर प्रकार के पान मसाले और गुटखा पर प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रतिबंध के तहत तंबाकू और निकोटिन युक्त किसी भी प्रकार के पान मसाले और गुटखा के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप वर्ष 2016 से पान मसाले और गुटखा पर रोक लगी हुई है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत चयनित शिक्षकों को 31 मार्च तक योगदान करने का अवसर दिया है। पहले अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित थी। विभाग के अनुसार ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 5000 है जिन्होंने अभी तक संबंधित विद्यालयों में योगदान नहीं किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर भी सुने जा सकते हैं। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में रविवार से ईस्टर समारोह शुरू हो जाएंगे। गुड फ्राइडे पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा है कि यह दिन ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान की पुण्य स्मृति का दिन है। हम सभी को ईसा मसीह द्वारा बताए गए जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि प्रभु यीशु के बताए मार्ग के अनुसरण से मानव समाज कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी का पुनर्गठन कर दिया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा मंत्री अकादमी की 21 सदस्यीय सामान्य परिषद के अध्यक्ष होंगे। पदेन सदस्यों में पटना, तिलका मांझी, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव समेत कई अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं। इन सदस्यों की कार्यावधि 3 साल की होगी। हाजीपुर सुगोली नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित पारूखास देवरिया रेलखंड पर कल स्पीड ट्रायल होगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि स्पीड ट्रायल के बाद पूर्वी परिमंडल कोलकाता के संरक्षा आयुक्त रेलखंड का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने स्पीड ट्रायल के दौरान लोगों से रेलवे लाइन से दूर रहने की अपील की है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत 21 शहरों के अधिकतम तापमान में आंशिक कमी दर्ज की गई, वहीं 10 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 4 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
सांख्यिकी विश्लेषण से पता चल रहा है कि अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क, तापमान में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री का वृद्धि और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आंशिक बादल भी छाए रहने का पूर्वानुमान है।
पटना पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत अंजलि कुमारी का चयन विश्व एथलेटिक्स क्रिस कंट्री प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रतियोगिता का आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में होगा। अंजलि बिहार की पहली खिलाड़ी हैं जिनका चयन इस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। पटना की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी रघुनंदन पासवान को 20 वर्ष कारावास और 15,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूर्णिया जिले के पनमनखी थाना क्षेत्र के मोहनिया मुन्ना चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर 4,71,000 रूपये लूट लिए। वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुहा गांव के पास अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी से हथियार के बल पर 3,88,000 रूपये लूट लिए। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के बनखता चौक के पास एक मिठाई की दुकान में पुलिस ने छापेमारी कर 308 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना के केवड़ा चौकी क्षेत्र अंतर्गत तेल अइनपर गांव में पुलिस ने अफीम की खेती का उद्भेदन कर फसल को नष्ट कर दिया। इस मामले में पुलिस ने संबंधित किसान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पहले चरण में जदयू, कांग्रेस और वाम दलों से प्रत्याशी नहीं, राजद से 4, भाजपा से 2 और लोजपा आर तथा हम से 1-1 ने भरा पर्चा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, महागठबंधन में सीटें तय, नियम और शर्तें लागू, सीट बंटवारे के नियम भी राजद के और शर्तें भी उसी की। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, जरूरत पड़ी तो अग्निपथ में बदलाव संभव। प्रभात खबर की सुर्खी है, विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा विभाग की बैठक रद्द, न अफसर पहुंचे और न ही कुलपति। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, केजरीवाल ने कोर्ट में खुद की पैरवी, ईडी की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ी। आज अखबार लिखता है, हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सहमति बनी, आज होगी औपचारिक घोषणा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई संसदीय क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त, कुल 110 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। राज्य सरकार ने तंबाकू और तंबाकू से बने पान मसाले और गुटखा पर प्रतिबंध की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई। और आज गुड फ्राइडे है, गिरजाघरों में हो रहा है विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।